दंडोत बंदन अनकवार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी बेसुमार अथाह अगनत अतोलय ज्यों बुलावहो त्यों नानक दास बोलय। दसों पातशाहियों के ज्योत स्वरूप साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी महाराज के चरणों में उपस्थित गुरु के साजी निवाजी सात संगत जी गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। अभी अभी आदरणीय जसविंदर सिंह जी पासों बहुत ही सुंदर इलाही वाणी का कीर्तन सुन रहे थे, विच दुनिया सेव कमाइए ता दरगह वैसन पाइए कहो नानक बाहुल उड़ाइए। ये सच्चाई है कि जब कोई गुरसिख निष्काम भाव होकर के सेवा करता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है और शुद्ध मन में ही परमात्मा का वास होता है। ये मन जो है अनेक अनेक जन्मों के पापों के कारण काला हो चुका है। जन्म जन्म के इस मन को मल लागी काला हुआ सिया। इस काले मन को धोने के लिए सेवा और सिमरन। सेवा से मन शुद्ध होता है और सिमरन से कीर्तन से मन टिकाव में आता है और कथा सुनने से आत्मा का दर्शन होता है, वाहिगुरु का दीदार होता है। इसीलिए पंचम पातशाह साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें उपदेश करते हैं सबसे उत्तम हर की कथा। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पवित्र पावन वाणी 52 अखरे की कथा आप लोग लड़ीवार सुन रहे हैं। आज गुरु महाराज हम लोगों को उपदेश कर रहे हैं श्लोक कुंट चार दहदिश भ्रमे करम किरत की रेख सुख दुख मुकत जोन नानक लिखियो लेख। कुंट चार दहदिश भ्रमे दसों दिशाओं में घूमकर भटक कर जाकर हमने देख लिया। क्या देखा? क्योंकि दसों दिशाओं के अंतर्गत सारा संसार आ जाता है, सारा ब्रह्मांड दसों दिशाओं में है। दसों दिशाओं में जाकर के ये देखा कि हर एक आदमी ने जैसा पूर्व जन्म में कर्म किया है और कर्मों के अनुसार वाहेगुरु ने जैसे उसके मथे में लिख दिया है वैसा ही इस संसार में भुगतना पड़ता है। कुंट चार दहदिश भ्रमे कर्म किरत की रेख। कर्मों के अनुसार कर्ता जो वाहेगुरु है उसके मस्तक पर लिख दिया है। सुख दुख मुकत जोन, इस संसार में जहां जहां से भी सुख मिलता है वो तुम्हारे ही पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल है, और जहां जहां से दुख मिलता है वो तुम्हारे ही बुरे कर्मों का फल है। इस संसार में ना तो कोई किसी को दुख देता है ना कोई सुख देता है, अपने ही अच्छे कर्मों से सुख पाते हैं, बुरे कर्मों से दुख पाते हैं, और अच्छे कर्मों से मुक्ति को प्राप्त होते हैं और बुरे कर्मों से 84 लाख जूनियों में भटकते हैं। कुंट चार दहदिस भ्रमे कर्म किरत की रेख, सुख दुख मुकत जोन नानक लिखियो लेख, लेख न मिटे हे सखी जो लिखिया करतार। मनमुख मोए जिन दूजी प्यासा, बहु जोनी भवह धुर किरत लिखियासा, जैसा बीज है तैसा खासा। सात संगत जी, एक समय की बात है, एक माता पिता का भक्त हुआ है श्रवण। यूं भी माता को प्रथम उस्ताद कहा गया है, उसके बाद पिता को और फिर गुरु को। माँ जो है प्रथम गुरु है, प्रथम उस्ताद है, जो बच्चे को किस तरफ लगाना है यह माँ के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जब श्रवण बड़ा हुआ, क्योंकि उसके माता पिता ने बहुत अच्छे संस्कार दिए थे, किसी कारणों से माता पिता दोनों अंधे हो गए बीमार होने के कारण। श्रवण माता पिता का भक्त था, उसने सत्संग में ये सुन रखा था कि जो माता पिता की सेवा करते हैं उसको जन्नत जाने की आवश्यकता नहीं, माता पिता के चरणों में ही जन्नत का निवास होता है, ऐसा सत्संग में सुन रखा था। आज सात संगत जी लोग भारत देश छोड़कर विदेश तो आए हैं, अच्छे कार, अच्छी कोठियां और बहुत से डॉलर तो कमा लिए, लेकिन मैं जिन भी घरों में जाता हूँ, माता या पिता कुछ भी अपने बच्चे को कहते हैं तो शायद ही कोई घर का बच्चा है जो माता पिता की बात को मानते हैं। यहाँ तक कि भी सुन रखा है कि थोड़ी सी बातें होती हैं तो बच्चा जो है पुलिस को फोन कर देते हैं और माता पिता को ले जाते हैं। ऐसा संस्कार हमारे देश में तो अभी भी नहीं है। बड़े भी हो जाते हैं 40-40, 50-50 साल के, फिर भी पिता से थोड़ा सा लिहाज, आदर, डर होता है। श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए ले जा रहा है। उसके माता पिता कह रहे हैं, पुत्र मुझको तीर्थों में ले चलो, जहाँ पर संत महापुरुष गुरसिख लोग ने ध्यान किया है, पाठ किया है, सुमरन किया है, प्रभु से जुड़े हैं, वो धरती पावन पवित्र जहाँ जहाँ हुआ है मुझे ले चलो, वहाँ की धूली और यदि वहाँ पास में नदी है तो स्नान करके सिमरन करके हम भी पुण्य को बढ़ाएंगे। जिसे वैकुंठ में वास हो। माता पिता की आज्ञा का पालन करके श्रवण उसको डोल में बिठाता है। आप देखे होंगे इंडिया में कंधे पर लोग इस तरीके से लकड़ी जैसा होता है और एक बाल्टी आगे लटका होता है, एक पीछे होता है और लोग मजदूर लोग ढोते हैं उस जल को, उसको कांवर भी कहते हैं। वो कांवर पर एक तरफ माता को एक तरफ पिता को बैठा करके कंधे से ले जा रहा है, हर एक तीर्थों में ले जाता है। वहाँ पर पानी की व्यवस्था, रोटी की व्यवस्था, पूरी सेवा करता है और तीर्थों की महानता को बताता है श्रवण। माता पिता उसको आशीर्वाद देते हैं और माता पिता का जो आशीर्वाद होता है वो पुत्र के पापों को दूर करता है। सत्संग जी एक बार अचानक राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए गया हुआ था। श्रवण माता पिता को पानी पिलाने के लिए एक तालाब में गया, हाथ में लोटा था। जब उसने लोटे को तालाब में डाला तो आवाज आया। दशरथ जो है, दशरथ के पास एक ऐसी विद्या थी कि शब्द भेदी बाण चलाता था वो, कि कहीं से भी शब्द आ रहा हो साउंड और वो बाण छोड़ता था और वहीं जाके लगता था, शब्द भेदी बाण। उसने देखा तो नहीं, वो तो दूर था। उसने विचार किया कोई ना कोई हिरन या कोई ना कोई शेर पानी पीने के लिए तालाब में गया है और उसकी आवाज है। उसने शब्द भेदी बाण चलाया और जा करके श्रवण को लग गया। जब दौड़ा दौड़ा तालाब के पास आया तो देखता क्या है, एक नौजवान लड़का, उसको बाण लगा है और वो तड़फड़ा रहा है, खून बाहर आ रहा है। सात संगत जी यह देख करके राजा दशरथ बहुत दुखी हुआ। यूं तो धर्मात्मा राजा था वो, लेकिन कर क्या सकता था, वहां पर बहुत रोता है अपने कर्मों को देख करके। उस वक्त दशरथ कहता है श्रवण को, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, तुम कहो तो मैं प्राण भी दे दूं तेरे लिए। श्रवण कहता है प्राण देने की आवश्यकता नहीं, तुम ये लोटे का पानी ले जाओ और हमारे माता पिता प्यासे हैं उनको जाके पिला दो। श्रवण तो वहीं मर गया। वो राजा दशरथ जाता है और उसके माता पिता को आगे हाथ में लोटा थमाता है पानी के लिए। बेटा श्रवण, तुमने बहुत लेट किया, क्या बात है? राजा दशरथ कुछ बोलता नहीं, सिर्फ आंख से आंसू आ रहा है उसको। बेटा श्रवण, दस क्यों लेट हो गया, क्या बात हो गई बेटा? राजा दशरथ बोलता नहीं, सिर्फ हाथ में लोटा थमाता है। सात संग जी जब काफी देर तक नहीं बोला तो श्रवण का पिता कहता है, बेटा सच से दस बात क्या है, जब तक तू बताएगा नहीं तब तक मैं तेरा पानी नहीं पीऊंगा। सात संग जी राजा दशरथ से रहा नहीं गया, फूट फूट कर रोने लग पड़ा। कहता है, पिताजी श्रवण तो इस संसार में नहीं रहा, लेकिन आप पानी अवश्य पी लें। इस श्रवण ने कहा है कि आप हमारे पिताजी को पानी दे देना। और उसने सारा हाल बताया कि मेरे हाथों ये घोर पाप हुआ है। सास संगत जी उसकी माँ उसके वियोग में तड़प कर मरने लगी। श्रवण की माँ कहती है कि मेरा प्राण तो श्रवण के पास था, श्रवण के बगैर मैं कैसे जिंदा रह सकती, और उसी वक्त प्राण छोड़ दिए। उसका जो पिता था वो भी बहुत दुखी हुआ और वो श्राप दे दिया राजा दशरथ को कि दशरथ जिस तरह मैं अपने पुत्र के वियोग में मर रहा हूं यह तो निश्चित है कि मैं जिंदा नहीं रहूंगा। पानी को रहने दो, जिस प्रकार मैं अपने श्रवण पुत्र के वियोग में मर रहा हूं तुमको भी इसी तरह तड़प के मरना पड़ेगा। अहकर करे सो अहकर पाए। सास संगत जी वही दशरथ बाद में जब रामचंद्र को जो राजकुमार है बड़ा पुत्र है उसको सिंहासन देने लगा तो उसकी जो तीन रानियां थी कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जिसमें कैकेयी को वो ज्यादा प्रेम करता था, यूं तो सारे बहुत अच्छे थे, कैकेयी जहां भी जाता था दशरथ नाल जाती थी, और कैकेयी का बहुत बड़ा योगदान था, उसने दो बार राजा दशरथ को जान बचाया था युद्ध के मैदान में। सास संगत जी उसने दशरथ ने कह दिया था कि जब भी इच्छा होगी मैं तुमको वर देता हूं, कुछ भी मांगना होगा मांग लेना। सास संगत जी जब प्रेम होता है तो देने की भावना होती, कुर्बानी की भावना होती। वहां पर कैकेयी कहती थी कि आप हमारे पति हैं, आप हमारे लिए सब कुछ हैं, जब आप हैं तो हमें और क्या चाहिए। हुआ क्या था कि देवासुर संग्राम में युद्ध हो रहा था, युद्ध होते होते राजा दशरथ मूर्छित हो गए, पीछे कैकेयी बैठी थी, कैकेयी ने एक हाथ से राजा दशरथ को संभाली और दूसरे हाथ से धनुष बाण चलाई और रथ को मोड़ करके राजदरबार में ले आई। हमारी माताएं बहनें पहले बहुत वीर हुई, लक्ष्मीबाई, एक बार और इसी तरह से युद्ध में गए थे राजा दशरथ, कैकेयी पीछे बैठी थी, पहिए का जो रथ के पहिए का जो किल था वो निकल गया। अचानक कैकेयी देखती है कुछ भी नहीं यहां पर है, क्या किया जाए, और यदि हमारे पति देव का ध्यान बट जाता है तो आगे दुश्मन हावी हो जाएंगे। सास संगत जी वहां पर कुछ ना देख करके कैकेयी ने हाथ अपना डाल दिया उसमें और रथ चलता रहा। युद्ध जब समाप्त हुआ जीते और जब लौट रहे थे तो देखते हैं कैकेयी जो है का हाथ पूरा लहू से भरा हुआ है, गिर रहा है। ये देख करके राजा दशरथ पूछने लगे कैकेयी क्या हाल है, क्या कारण तुमने, उसने सारा हाल बताया। राजा दशरथ कहते हैं कुछ भी मांगना है मांग, हमें कुछ नहीं चाहिए। जब प्रेम होता है तो कुर्बानी की भावना होती है, देने की भावना होती है, जब वासना होता है तो लेना ही लेना होता है। वासना और प्रेम में इतना ही फर्क है। हम घरों में भी देखते हैं जब आपस में पति पत्नी में प्रेम होता है तो कुर्बानी एक दूसरे को करते रहते हैं, और जब प्रेम खत्म होता है, स्वार्थ आ जाता है, वासना आ जाती है, तो फिर कचहरी को जाते हैं, आधी हम संपत्ति लेंगे आधे तुम लो, ये सारा कुछ रोज सब कारण हो। हुआ क्या सास संगत जी, कैकेयी ने वही दो बार मांगा क्योंकि कहानी लंबी है, आप लोगों को पता भी है कि एक तो हमारे पुत्र को राजगद्दी मिले और राम को 14 वर्ष का वनवास। दशरथ बहुत रोते हैं, कैकेयी ठीक है तुम्हारे पुत्र को मैं राज दे देता हूं, लेकिन जो दूसरा वर है और तू राम को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, आज क्या हो गया? कारण क्या हुआ था? मंथरा दासी थी, मंथरा, और उसकी बुद्धि मंद था, खोटी बुद्धि की थी, साकत थी वो, और साकत का संग करने से मनुष्य का बुद्धि जो है नाश हो जाता है। जब कैकेयी ने मंथरा का संगत किया तो कैकेयी का मन मलिन हो गया, और जब मन मलिन हो जाए तो वासना जगता है, और वासना के कारण जिस राम को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी कैकेयी, भरत से भी ज्यादा करती थी प्रेम, लेकिन आज वही उसके लिए 14 वर्ष का वनवास। बार बार दशरथ कह रहे हैं कि तू राज्य तेरे पुत्र को भरत को दे देता हूं, लेकिन इसको वनवास वाला वर तो ना मान, इसने क्या किया है तुम्हारा? यहां तक कि पंछी भी इसको प्रेम करते हैं राम को, कीड़े मकोड़े सारे जो है, दरख्त भी इसको जो है प्यार करते हैं, सारे दुनिया प्रसन्न है इनके ऊपर, ऐसा तो ना कर। लेकिन स्त्री का हठ भी प्रसिद्ध है, उसने जो है ऐसा ही वर मांगा, और जैसे ही राम राज दरबार से जाने लगे, हा राम हा राम हा राम करते करते उसने प्राण छोड़ दिए। वही जिस प्रकार से श्रवण के पिता ने डेथ हुआ था, उसका श्राप जो है इसको यहां पर लगा है। आज का जो सारा प्रसंग साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें उपदेश कर रहे हैं, कुंट चार दहदिस भ्रमे करम किरत की रेख, सुख दुख मुकत जोन नानक लिखियो लेख। साध संगत जी कभी सपने में भी ये दास नहीं सोचा था कि कनाडा आएंगे, सोचा ही नहीं था सपने में भी। अचानक ये दास भदौड़ से बाबा जी का दर्शन करने के लिए जा रहा था, वहां पर गुल्लू बाबा जी से पूछते हैं कि स्वामी जी कहाँ गए? कहते वो तो चले गए, जो अभी 5 किलोमीटर ये दास गया था, कहते उनको बुला लो। गुल्लू बाबा जी ने फोन किए कि स्वामी जी कहाँ हो? मैं क्या, मैं 5 किलोमीटर निकल गया। कहते आ जाओ बाबा जी याद कर रहे हैं। अंदर गया, बाबा जी का दर्शन किया। मैं क्या बाबा जी, काफ़ी देर शाम के पास आपके चरणों में बैठा, संगत बैठा था, तो मैं सोचा बाहर से आपको दर्शन करके नमस्कार करके अनुरोध करके मैं जाऊँ। कहते नहीं नहीं आप जब मर्जी आओ, और यही बातों बातों में चल पड़ा। वहाँ पर बाबा जी कहते हैं कि आपने कहाँ जाना? अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है। मैं कहा बाबा जी आपकी इच्छा, जहाँ भेज। मैं कहा दो में जो है आप कह रहे हैं अमेरिका या कनाडा, आप कनाडा भेज दें, ठीक है। उसी वक्त गुरमीत था, कहते हैं भाई स्वामी जी का पासपोर्ट लेकर के ने इनको भेज दें। देखो एक जागंदे ना लहन एक सुतिया दे उठा, ये दास तो जा रहा था और जा करके उन्होंने बुलाया। और ये जो आप लोगों का दर्शन, ये तो सपने में नहीं सोचा था, एक सब कोई पूर्व जन्म का ऐसा विधि विधान है सात संगत जी के आप लोगों का दर्शन करने के लिए दास यहाँ आया है। यहाँ पर गुरु महाराज उपदेश कर रहे हैं, कुंट चार दहदिस भ्रमे करम किरत की रेख, सुख दुख मुकत जोन नानक लिखियो लेख। पौड़ी कक्का कारण करता सो लिखियो लेखना मेटत को, लिखियो लेखना मेटत को, कोई मेट नहीं सकता है। ईश्वर ने वाहिगुरु ने हमारे ही कर्मों के अनुसार जो लिख दिए एक बार, उसमें संशोधन नहीं होता। ऐसा नहीं कि बाद में उसको काट के फिर और लिख, ऐसा नहीं। कक्का कारण करता सो, लिखियो लेख न मेटत को, नहीं होत कछ दो बारा। वो दोबारा उसमें कोई संशोधन नहीं होता। नहीं होत कछ दो बारा, करना है हारना भूलन हार। जो कर्ण हार वाहे गुरु है वो भूलता नहीं है कि हमने ये लिखना था ये क्यों लिख दिया। वो तो घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। वो क्या कर रहा है इंसान, वो ऐसा ऑटोमेटिक कैमरा लगा हुआ है कि सात कमरे के अंदर कोई छिप के भक्ति कर रहा हो वो भी प्रकट हो जाता है, और सात कमरा बंद करके कोई पाप कर रहा हो वो भी प्रकट हो जाता है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज आज हम लोगों को यही उपदेश कर रहे हैं कि जेहा विजय सो लुड़े, कर्मा समरा खेत। सत्संगत जी, कर्म की ही ऐसी विधि विधान है कि एक बार सिकंदर अमृत खोजने के लिए जा रहा था। अमृत, वो बड़ा महत्वाकांक्षी राजा था। वो रात दिन इधर उधर खोजते खोजते आखिर वो अमृत का सरोवर उसने पा ही लिया और बहुत प्रसन्न हुआ। जैसे ही अमृत सरोवर के पास गया, इंद्र ने विचार किया कि यदि इसने अमृत पी लिया तो अभी तो धरती की विजय सोच रहा है, ये देवताओं के ऊपर भी विजय करने के लिए सोचेगा। उसी वक्त एक अप्सरा को भेजा कि तुम किसी तरह इसको भरमा दो। सत्संगत जी, एक स्त्री, सारा शरीर में उसका कोढ़ है, सारा शरीर गला हुआ शरीर, और वहां पर किनारे में बैठा रो रही। अचानक सिकंदर ने देखा, पहले तो सिकंदर ने जो अमृत था वो बुक भर लिया पीने के लिए, लेकिन जब रोने की आवाज आई तो उसका ध्यान उधर गया। सिकंदर कहता है कि बहन जी क्या बात है, क्या क्यों दुखी हो इतना? वो कहती है मैं इसलिए दुखी हूं, मैं तो दुख पा ही रही हूं इसको पी करके, मैं चाहता हूं कम से कम आपको सावधान कर दूं। मैंने, मुझको भी किसी ने बताया था कि ये अमृत है, और मैंने पिया और पीते ही मेरा शरीर गल गया, जो कोढ़ हो गया सारे शरीर से, तो मैं चाहती हूं तुमको सावधान कर दूं। सत्संगत कहती अच्छा, भर हाथ बुक में भरा हुआ अमृत उसने गिरा दिया, एक कर्मों की कैसा ले, और वहां से वो चल पड़ा। एक शायर कहता है कि शाह सिकंदर ढूंढे आबे हयात नू, आबे हयात कहते हैं अमृत को, शाह सिकंदर ढूंढे आबे हयात नू, फिरदा विच पहाड़ा दिन ते रात नू, फेर न पीता प्याला अपने दस्त भर, वजीदा कौन साहेब नू आखे इंज नहीं तू इंज कर। ये तो वाहे गुरु की मर्जी, जय भाव है तेरे, और ये सब कर्मों के अनुसार है। आज साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज हम लोगों को उपदेश कर रहे हैं, कक्का कारण करता सो, लिखियो लेख न मेटत को। कोई भी आदमी परमात्मा के लेख को मिटा नहीं सकता है। लेख न मिटई पूरब कमाया, क्या जाना क्या होसी, किसको क्या पता है। नहीं होत कछ दो बारा, करना हारना भूलन हारा। वो जो वाहेगुरु है कभी भूलता नहीं है, गलत से किसी का लेख नहीं लिख देता है। हम लोग दोष देते हैं ईश्वर को कि हमने किसी का माड़ा नहीं किया, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। सत्संगत जी, जब हम कर्म करते हैं ना तो ये बोलते हैं कौन देख रहा है। जब उसका फल मिलता है तब कहते हैं हमने तो किया नहीं था, ये आग कहाँ से गया। भूलन बिच किया सब कोई, करता आप ना भूले। अज्ञानता के कारण मनुष्य अहंकार करता है, अज्ञानता के कारण लोग दूसरे को सताते हैं, ईर्ष्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। भूलन बिच किया सब कोई, करता आप ना भूले, वो नहीं भूलता। भूलन अंदर सबको अभूल गुरु करता, भूलिया आप समझायसी जाको नजर करें। इसलिए साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, नहीं हो तो कछ दो बारा, करने हारना भूलन हारा। काहू पंथ दिखा रहे आपे, काहू उद्यान भरमत पछतापे। किसी को तो परमात्मा राह बता देता है अपने घर का, इस तरीके से आ जाओ, और किसी को जो है सो भंबल भूसे में पा देता है, भटकी जाओ भटकी जाओ। लेकिन इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है। जिसको वाहेगुरु आसानी से राह बता देता है ने, उसने कर्म बहुत अच्छे किए हैं, उसने सेवा किया है, उसने सिमरन किया है, महापुरुषों के चरणों में रह करके उसकी धूली को मस्तक में लगाया है। ये नहीं कि हर एक जगह निंदा, हर एक जगह चुगली, हर एक जगह बुरा करने की भावना, ऐसा नहीं रहा है। काहू पंथ दिखा रहे आपे, काहू उद्यान भरमत पछताव है। किसी को तो जो है जंगल में जो है सो उसको भटकाते रहता है वाहेगुरु। बिसरंत हर गोपाल है, नानक ते प्राणी उद्यान भ्रम ने। इकना भक्ति लाए एक आप खोइंदा, इकना मार्ग पाए एक उजड़ पाइंदा। ये तो वाहेगुरु की मर्जी है, और मर्जी का मतलब ये नहीं कि वो अन्याय करता है, वो तो न्यायकारी है। वैसा न्यायकारी जो है सो इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है, न्याय करता है उसके कर्मों के अनुसार। महा उद्यान अटवी ते काढ़े, मार्ग संत कहियो, देखत दर्श पाप सब नासे, हर नानक रतन लयो। आपन खेल आप ही कीनो, जो जो दिनों सो नानक लीनो। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, ये वाहेगुरु का खेल है, चोज है, यह परपंच पार ब्रह्म की लीला, विचरत आन ना होए। आप देखना कभी कभी रेते का ढेर हो ना, तो दो चार बच्चे उठे इकट्ठे हो जाते हैं, और कोई घर बनाता है, कोई कुछ बनाता है, बहुत मेहनत से दरवाजे भी बनाता है रेते का ही, सब कुछ कुर्सियां भी बनाता है। आपस में बच्चे झगड़ भी पड़ते हैं कि मेरे दरवाजे की तरफ कुछ नहीं, इधर नहीं आना, घंटों मेहनत करते रहता है। शाम का वक्त हो जाता है, माँ बुलाती है, बेटा आ जाओ रोटी खा ले, दो मिनटों से रेते को जिसको उसने घंटों लगाया बनाने में, दो मिनट में हाथ से फेर देता है। इसी तरह से जिस ब्रह्मांड को वाहेगुरु ने इतने सुंदर सुंदर बनाए हैं, देखो मोर के पंखों में जो रंग परमात्मा ने कैसे हाथों से भरे, ये फलों में कितने सुंदर सुंदर रंग, पंछियों को उड़ते हुए देखो वो कैसा परमात्मा ने उसको रंग बिरंगे बनाए हैं, फूलों को देखो, लोगों को देखो कितने सुंदर लगते हैं। इस प्रकृति की हर एक सुंदरता को देखो, परमात्मा ने अपने हाथों से बड़े मेहनत से बनाया है। लेकिन जब वो खेल समेटना होता है तो दो मिनटों में जो है सारे पृथ्वी को जल में डुबा देता है, और जल में अग्नि पैदा होता है, वो सारे जल सूख जाते हैं, अग्नि रह जाता है, और एक ऐसी हवा चलती है सारे अग्नि को बुझा देती है, हवा रह जाता है, हवा शांत होता है, सिर्फ आकाश रह जाता है खाली जगह, और खाली जगह भी जो है एक निरंकार में लय हो जाता है, बस वही बच जाता है। एक है अनेक है फिर एक है, फिर एक हो जाता है। आपन खेल आप ही कीनो, लेकिन मनुष्य पता नहीं किन किन छोटी छोटी बातों के लिए सारी जो एनर्जी है ऊर्जा, उसने जी ऐसा बोला था 10 साल पहले, उसी को घसीटी जा रहा है, उसने ये किया था, उसने वो किया था। जब आके लोग सुनाते, मैं कहता हूँ भाई आर यू लूजिंग योर एनर्जी, मैं क्यों है एनर्जी को खराब कर रहे हो, अपने लक्ष्य को देखो, टारगेट को देखो कि किस लिए इस संसार में आए थे। आपन खेल आप ही कीनो, जो जो दिनों सो नानक लीनो। यहाँ पर जिन जिन लोगों ने भी परमात्मा ने जो जो जिसको दिया है उसको जो है सो उसके कर्मों के अनुसार ही दिया है। एक बच्चा जन्म लेता है, करोड़ों अरबों का मालिक होता है। एक आदमी सारी जिंदगी दौड़ा दौड़ा भागा फिर मसा वो रोटी दो चल पाता है। आखिर कोई ना कोई मिस्ट्री है ना इसमें, कोई रहस्य तो है। रहस्य यही है, कर्मों का है। कर्मों के अनुसार वाहेगुरु ने सब कुछ किया है। भाई गुरदास जी कहते हैं, सत संतोख दया धर्म अर्थ सुगर्थ साध संग आवे। जो सच्चे लोग हैं उसके अंदर सत संतोख दया धर्म जो है आप ही आ जाता है। सत संतोख दया धर्म अर्थ सुगर्थ साध संग आवे। काम क्रोध असाध संग लोह मोह अहंकार मचावे। जो साकत पुरुष है वो हों 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 करी जाएगा। मैं देखता हूँ उसका पाँव नहीं टिकता। जहाँ जाएगा अपने धन का अहंकार, जवानी का अहंकार, ये नहीं पता कि जैसे पत्ते पर ओस है वो कब गिर जाएगा कोई भरोसा नहीं। दरख्त में सूखे पत्ते हैं, कब हवा से झड़ जाएगा और इधर उधर टोक ठोकरे खाएगा। लेकिन मनुष्य पता नहीं किस चीज का अहंकार करता है। इस संसार में अहंकार करने योग्य कुछ भी नहीं है, ना ठेड़े दिन चार। काम क्रोध असाध संग लोभ मोह अहंकार मचावे। दुकृत सुकृत कर्म कर बुरा भला हुए नाव परावे धरावे। गोरस गाई थाए पड़ इक इक जनदी वग वधावे। देखो गौ है बेचारी, गौ को हम घास खिलाते हैं, सूखा सूखा घास खिलाते हैं और वो हमको दूध देती है। जो अच्छे पुरुष हैं, सत्संगी लोग हैं, हम उसको अनादर भी दें लेकिन हमको फिर भी वाहेगुरु के भजन कीर्तन सुनाते हैं, वो गौ के समान। और साकत पुरुष कैसा है, वो सांप के समान। सांप को पिलाओ दूध और देगा जहर। साकत पुरुष जो है सांप के समान होता है और जो भला पुरुष है, सत्संगी पुरुष है, गुरुमुख पुरुष जो है वो गौ के समान है। भाई गुरदास जी कहते हैं, गोरस गाई थाए खड़ इक इक जनदी वग वधावे। दूध पीते वे हो देव सप, जन जन बाहले बच्चे खावे। और जो है अपने बच्चे भी खा जाती है सांप, दूसरे की तो छोड़ो, और गौ जो है अपने बच्चे को दूध पिलाती, यहाँ तक कि दूसरे के बच्चे को भी दूध पिला करके पालती। छोटा बच्चा किसी के माँ के स्तन में दूध ना आवे तो लोग जो है बोतल में डाल के दूध देते हैं, बच्चे को पालते हैं। ये इसीलिए गौ को माता का जो है सो हम खिताब देते हैं, आदर करते हैं। संग स्वभाव असाध संग, पाप पुण्य दुख सुख फल पावे, परोपकार विकार कमावे। इसलिए साध संगत जी, यहाँ पर जो साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, आपन खेल आप ही कीनो, जो जो दीनों सो नानक लीनो। दद्दे दोष न देव किसै, दोष कर्मा आपणिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै वर्जना। किसको दोष देना, किता पाइए अपना सघाल बुरी क्यों करे। एक सीधी सी जो है एक नियम लिख के रख लो, जहां जहां से मान मिल रहा है, जहां जहां से जस मिल रहा है, जहां जहां से सुख मिल रहा है, वो तुम्हारे ही अच्छे कर्मों का फल है। जहां जहां से अपमान मिल रहा है, जहां जहां से निंदा मिल रही है, जहां जहां से दुख मिल रहा है, जहां जहां से क्लेश मिल रहा है, वो हमारे ही बुरे कर्मों का फल है। इसलिए किसी को दोष देने की जरूरत नहीं। भजन सुमरण कीर्तन करते हुए ये जो जीवन की यात्रा है उसको भला मान करके, जो वाहेगुरु कर रहा है सतवचन सतवचन, उसको भला मान करके जो है चलते जाना है, चलते जाना है। कोई शिकायत नहीं वाहेगुरु के आगे, कोई शिकायत नहीं, नो किसी तरह का कोई जो है सो, हे वाहेगुरु जो तू कर रहा है मुझे मंजूर है। और जो वाहेगुरु के भाने में रहता है वह व्यक्ति जो है उसका लोक सुखे परलोक सुहेले, नानक हर प्रभु आपे मेले। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। सात संग जी, कल संग्रांत का पावन दिहाड़ा है और आप लोग सुबह 6 बजे आकर के, एक तो हमारे आदरणीय विहंगम जन हैं इनसे कीर्तन सुने और साथ में महीना सुने, क्योंकि 12 माह का जो महीना, 12 माह का जो पाठ है वो भी आप सुने, उसके सुनने का बहुत महत्व है। और जब महीना आप सुनेंगे गुरुमुख से आपका सारा महीना सुखमय व्यतीत होगा। तो आप लोग कल सुबह आए, अपना जीवन पवित्र करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह।